ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल प्रीमियर लीग की विजेता बनी जनकपुर बोल्स फाइनल मैच में सुदूरपश्चिम को हराया 5 विकेट से। योग और ध्यान को विद्यालयों में लागू करना और युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना जरूरी, प्रधानमंत्री ओली का कथन। बाजुरा में आज सुबह आए भूकंप में 15 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आए हुए आतंकी हमले में 16 सैनिकों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पहले नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल की विजेता जनकपुर बोल्स बनी है। आज कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में हुए फाइनल मैच में सुदूरपश्चिम को 5 विकेटों से हराते हुए जनकपुर ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जनकपुर बोल्स ने ट्रॉफी के साथ साथ 1,10,00,000 रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मैच जीतने के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड और नेपाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद ने संयुक्त रूप में 1,10,00,000 रुपए का चेक जनकपुर के कप्तान आशिफ शेख और अनिल शाह को प्रदान किए। वहीं दूसरे स्थान पर रही सुदूरपश्चिम रॉयल्स को युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजूलाल चौधरी ने 51,00,000 रुपए प्रदान किए। तीसरे नंबर पर रही कर्णाली यक्स और चौथी चितवन राइनोज को क्रमशः 25,00,000 और 15,00,000 मिले। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने पहले नेपाल प्रीमियर लीग की विजेता बनी जनकपुर वोल्स को बधाई दी है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रतियोगिता में सहभागी सभी को शुभकामना देते हुए विश्वास जताया कि अगले संस्करणों में वे और बढ़िया करेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि समूचे विश्व को शांति के मार्ग पर चलाने के लिए योग और ध्यान को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना जरूरी है। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आज काठमांडू के टूरी खेल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध और द्वंद्व को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक चिंतन के साथ योग और ध्यान को अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ओली ने आगे कहा कि योग और ध्यान को विद्यालय में लागू करने के साथ ही युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आज इटहरी में नेपाल जेसिस के 91 राष्ट्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में हुए परिवर्तन के बाद आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में काफी सुधार हुए हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं और महिलाओं के क्षमता विकास में जेसिस की भूमिका की प्रशंसा की। सरकार हर पालिका को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के हिसाब से व्यवस्थित और सक्षम बनाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय के मातहत में रहे राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थानीय तहों को आपदा उधार में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराएगा। ये बात प्राधिकरण के सहसचिव डॉ भीष्म कुमार भूसाल ने बताई। उन्होंने बताया कि आपदा व्यवस्थापन के उद्देश्य से पालिकाओं में न्यूनतम मापदंड पहुंचाने के लिए जरूरी तैयारियां शुरू हो गई है। बाजुरा में आज सुबह हुए भूकंप से 15 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप से 100 से अधिक घरों में क्षति हुई है और उनमें से 15 घरों में रहने की स्थिति नहीं है। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी मेघनाथ उपाध्याय ने दी। बता दें कि बाजुरा के जगन्नाथ गांव पालिका स्थित गोत्री को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह 5.2 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने मातृभूमि के प्रति गौरव के साथ देश विकास के अभियान में जुटने का युवा पीढ़ी को आह्वान किया है। आज रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल द्वारा काठमांडू के दरबार मार्ग में संचालित रैथाने उत्पादन हाट बाजार मेला के अवलोकन के बाद अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि नेपाल में स्रोत साधन और जनशक्ति पर्याप्त है, इसलिए इसका अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार संघीयता को सबल बनाने के लिए क्रियाशील है। आज निर्माणाधीन गणेश मान सिंह राजमार्ग के निरीक्षण के बाद उप प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री सिंह ने कहा कि गुणस्तरीय निर्माण में विशेष ध्यान देने के लिए संबंधित निकाय के अधिकारियों को निर्देश किया। बता दें कि काठमांडू के थानकोट से मकवानपुर की थाहा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 तक उक्त मार्ग निर्माणाधीन है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों ने जीवन शैली में परिवर्तन को जरूरी बताया है। आज विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर कैलाशकूट सामाजिक अभियान द्वारा आज काठमांडू के हाड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग और ध्यान को स्वभाव के रूप में अपनाया जाना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 16 सैनिक मारे गए और 8 घायल हो गए हैं। इसमें पाकिस्तान के 16 सैनिकों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए हैं और द खुराशान डायरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लिटासर क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी पर देर रात हमला हुआ। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। टीटीपी का हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.3 सेंटीग्रेड सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल प्रीमियर लीग की विजेता बनी जनकपुर बोल्ट्स फाइनल मैच में सुदूर पश्चिम को हराया 5 विकेट से। योग और ध्यान को विद्यालयों में लागू करना और युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना जरूरी, प्रधानमंत्री ओली का कथन। बाजरा में आज सुबह आए भूकंप में 15 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज हुए आतंकी हमले में 16 सैनिकों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।